व्यवस्था विवरण अध्याय 10। अध्याय 10 में वो वनवास में उनकी गलतियों की याद उन्हें दिलाता है कि जब परमेश्वर ने उन्हें पत्थर की पट्टियों पर आज्ञा दी थी तब वे सोने के बछड़े की उपासना कर रहे थे और वे पट्टियां तोड़ दी गई थी। इस कारण परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि वो फिर से उन्हें तैयार करे। तब उसने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सामने पर्वत पर पानी और भोजन का उपवास रखा था। और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे वे ही उसने पहले के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। व्यवस्था विवरण 10:4। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। पद 12 में एक प्रश्न है, और अब हे इसराइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। व्यवस्था विवरण 10:12। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सब के लिए है, परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा रखता है। परमेश्वर है या नहीं, मैं नहीं जानता कि लोग कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है। क्या आपने आज सुबह सूरज को उगते हुए देखा था? ओह, वो कैसा मनोहर दृश्य होता है। कोई उगते हुए सूरज को देखे और कहे परमेश्वर नहीं है, ये असंभव है। जब आप जीवन पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना विश्वास नहीं करने से अधिक आसान है। आप मानवीय शरीर को देखिए, आप उसकी एक कोशिका पर ही ध्यान दीजिए कि उसकी रचना कितनी जटिल है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के सिवाय कौन है जो ऐसी रचना कर सकता है। किसके पास अपरंपार बुद्धि और ज्ञान है? केवल परमेश्वर, जो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। अब जो ही मेरे मन में ये विश्वास होता है कि परमेश्वर है, त्यों ही एक प्रश्न उठता है कि उसने मेरी सृष्टि क्यों की। मैं नहीं सोच सकता कि परमेश्वर ने मेरी रचना करके कह दिया जाओ मन मर्जी करो। परंतु अब यदि परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की है तो उसका कोई उद्देश्य आवश्यक रहा है। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे विचार में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करके ये तो नहीं कहा होगा जा अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत कर। अपने सृष्टिकर्ता के प्रति निश्चय ही मेरे कुछ उत्तरदायित्व है, मुझ पर उसका आभार है। वे क्या है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। व्यवस्था विवरण 10:12 और 13 पद। ये एक बड़ा ही कठिन उत्तरदायित्व है। परमेश्वर की क्या अपेक्षाएं हैं? कि तू परमेश्वर का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की आज्ञाएं पूरी करे। अब आप कहेंगे इसमें तो मैं चूक गया, अब क्या होगा? बाइबल कहती है इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, रोमियो 3:23। तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि सब समाप्त हो गया? अब मेरे लिए आशा ही नहीं रही? नहीं, परमेश्वर के पास एक योजना है। मनुष्य तो उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने से चूक गया। यदि हम सब उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें तो हमारा संसार बड़ा ही मनोरम और मन भावन हो जाएगा। परंतु मनुष्य चूक गया, वो परमेश्वर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाया। परमेश्वर को स्वीकार करने के स्थान पर, उससे प्रेम करने के स्थान पर, उसकी सेवा करने के स्थान पर मनुष्य उसका विरोध करता है, उसकी निंदा करता है। हम उसके सारे मार्गों पर चलने, उससे प्रेम करने, उसकी सेवा करने से चूक गए हैं। जैसा हमें करना है वैसा हम नहीं करते, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम बहुत दूर चले गए और आशा ही नहीं रही। नहीं, नया नियम में हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु से पूछा गया, परमेश्वर के काम करने के लिए क्या करना होगा, अर्थात परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो, योहन्ना 6:29। या कि स्तुति करो, ये तो मैं कर सकता हूं, यद्यपि मैं परमेश्वर की अन्य सभी अपेक्षाओं की पूर्ति से चूक जाऊं, मैं परमेश्वर की इस एकमात्र इच्छा को पूरी कर सकता हूं। परमेश्वर आज मुझसे क्या चाहता है? कि मैं उसके पुत्र मसीह यीशु में विश्वास रखूं। मेरे लिए तो ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके उस प्रावधान पर विश्वास रखूं कि उसने मेरे पापों के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। जिसे उसने भेजा है उसमें विश्वास रख। जब मैं यीशु में विश्वास रखता हूं तो मुझे जीवन के लिए एक नया सामर्थ प्राप्त होता है, क्योंकि वो अब मुझ में अंतर्वास करता है। उसके अंतर्वास के कारण मुझे उसके सामर्थ से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए बल एवं क्षमता प्राप्त होती है। अब वो मुझे धार्मिकता के मार्ग में चलने का सामर्थ प्रदान करता है। वो मुझे परमेश्वर के लिए प्रेम प्रदान करता है। अब वो मुझ में वे काम करता है जो मैं अन्यथा नहीं कर पाता था। अब आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सिद्धांत नहीं त्यागे हैं, परंतु अब मसीह के माध्यम से वो मुझे सामर्थ प्रदान करता है कि मैं उसके अनुरूप आचरण करूं। जिस क्षण में मसीह में विश्वास ले आता हूं, उस क्षण उसकी विधियां मुझ में स्वतः ही पूरी होने लगती है। जिस क्षण मैं अपना जीवन उसे समर्पित करता हूं, उसी क्षण मैं उसकी अनिवार्यताओं की पूर्ति करता हूं। हम पुराने नियम में परमेश्वर की अपेक्षाओं को पाते हैं जो सर्वोच्च आदर्श की है, और ये भी देखते हैं कि हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। अतः हमें नया नियम में प्रवेश करना होता है जहां हम उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाते हैं। यहां हमें केवल उसमें विश्वास रखना है जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। अब वो उन्हें याद दिलाता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। व्यवस्था विवरण 10:14। सब कुछ परमेश्वर का है। ब्रह्मांड को देखो, सब कुछ उसी का है। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग अर्थात अरबों अरब, आकाश गंगाएं, सब उसी का है। भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब परमेश्वर ही का है। शैतान ने इन सब पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया था, इसलिए मसीह यीशु 2000 वर्ष पहले आया और इसका मुक्ति धन चुका दिया कि ये फिर से परमेश्वर की हो जाए। वो फिर से आएगा और अति शीघ्र आएगा तथा 2000 वर्ष पूर्व खरीदे गए संसार पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। तब ये फिर से परमेश्वर का हो जाएगा। यीशु आकर एक पैर पृथ्वी पर और एक पैर समुद्र पर रखेगा, तब वो स्वर्गदूत कहेगा, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। प्रकाशित वाक्य 11:15। तब वो अपने अधिकार से इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और आप उस संसार को देखेंगे जो परमेश्वर ने सृष्टि के समय अपनी इच्छा से बनाया था। आज लोग संसार को देखकर उलझन में पड़ गए हैं। एक प्रेमी परमेश्वर के रहते इस संसार में ये कैसी अव्यवस्था है। युद्ध क्यों होते हैं? लोग भूख से क्यों मरते हैं? मनुष्य विकलांग क्यों जन्म लेते हैं। ये वो संसार नहीं है जिसकी मनोकामना परमेश्वर ने की थी। ये विद्रोही संसार है। संसार के कष्ट उसके परमेश्वर के विरुद्ध बलवा का परिणाम है। एक दिन यीशु इस पृथ्वी पर राज करेगा और उस दिन ये संसार परमेश्वर की इच्छा का संसार होगा, जिसमें ना तो रोग होंगे, ना तो कष्ट होंगे, ना तो पीड़ा होगी, ना ही विकलांगिता होगी। उस संसार में लंगड़ा, अंधा, बहरा, गूंगा कोई नहीं होगा। वो संसार परमेश्वर की इच्छा का संसार होगा। ऐसे संसार को देखने के लिए मुझसे रुका ही नहीं जाता है। हम उस संसार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं जो परमाणु हथियारों द्वारा नाश होगा और जिस पर रेडियोधर्मी बादल छाया हुआ होगा। मसीह में विश्वास रखने के कारण हम उस संसार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें मनुष्यों पर मनुष्यों का शासन समाप्त हो जाएगा और एक राजा पृथ्वी पर धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा। उस समय मनुष्य शांति से रहेगा। वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों से हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी। मीका 4:3। और मनुष्य धार्मिकता का व्यवहार करेगा तथा रक्षा मंत्रालय कृषि मंत्रालय में बदल जाएगा। भविष्यत वक्ता के कहने का अर्थ यही है कि उस संसार में लालच नहीं होगी। उसमें बलवंत दुर्बल का शोषण नहीं करेगा, धनवान गरीब का शोषण नहीं करेगा। हम सब प्रेम का व्यवहार करेंगे और मनुष्यों में परमेश्वर की उपस्थिति तथा आनंद का अनुभव करेंगे। इसमें क्या बुराई है? मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए विनाश के दिन का संदेश क्या होगा। भाइयों, हियाव बांधो, आपको इस अव्यवस्था में ही रहना है। इससे मुक्ति पाने की कोई मार्ग नहीं है। अब यदि हम ये कहें कि ये अव्यवस्था समाप्त होने वाली है तो वो विनाश के दिन का संदेश नहीं है। ये तो महिमा का संदेश, ये आशा का संदेश है। मुझे आपको वचन से सुनाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम शीघ्र ही इस अव्यवस्था से मुक्ति पाएंगे और हम परमेश्वर के न्यायपूर्ण शासन की स्थापना को देखेंगे। स्वर्गों का स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वो शीघ्र ही उस पर अपना अधिकार करेगा। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले न रहो। व्यवस्था विवरण 10:15-16 पद। खतने की व्यवस्था प्रदान करने में परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि उसके लोग देहिक अभिलाषाओं को अपने से दूर करके आत्मिकता में उन्नति करें। संसारिक स्वभाव एवं मानसिकता के विपरीत आत्मिक स्वभाव एवं मानसिकता रखें। उन्हें संसारिक मनुष्यों के सदृश लालसाओं एवं अभिलाषाओं का शिकार नहीं होना है। उन्हें आत्मिक बातों में मगन रहना है। अतः परमेश्वर के साथ ये आत्मिक वाचा का चिन्ह था, खतना। उन लोगों की समस्या थी कि वे इस वाचा को केवल शारीरिक रूप से निभाते थे, आत्मिक रूप से नहीं। पौलुस अनुष्ठानों के रिवाज और आत्मिक समर्पण में अनुरूपता के विषय एफिसियों की कलीसिया को झिड़कता है। यीशु ने एफिसियों की कलीसिया से कहा, तुम में पहला सा प्रेम नहीं रहा। प्रकाशित वाक्य 2:4। आज की कलीसिया इसराइल से भिन्न नहीं है। वो बाहरी दिखावा करती है जबकि परमेश्वर मन को देखता है। इसलिए वो कहता है, अपने अपने हृदय का खतना करो। पौलुस भी रोम की कलीसिया को यही लिखता है, सच्चा खतना शरीर का नहीं हृदय का होता है। रोमियो 2:28-29 पद। मेरा मन संसारिक बातों को त्याग कर अब परमेश्वर की बातों का खोजी है। दाऊद ने अपने भजन में कहा, जैसी हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। भजन संहिता 42:1। परमेश्वर ऐसी ही मनुष्यों का खोजी है जिनमें आत्मिक मानसिकता हो, परमेश्वर की प्यास हो और जो परमेश्वर को समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये आत्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहन है और आत्मिक जीवन में प्रोत्साहन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। व्यवस्था विवरण 10:17। भय योग्य अर्थात श्रद्धा से भरा हुआ भय, जो किसी की पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। व्यवस्था विवरण 10:17। आरंभिक अनुवादों में भय योग्य कहा गया है, परंतु इसका अर्थ वो नहीं जो आज हम समझते हैं कि परमेश्वर भयानक है। इसका मूल अर्थ था श्रद्धा से पूर्ण आस्था। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। व्यवस्था विवरण 10:19-21 पर। ये परमेश्वर का भय मानने की, उसकी सेवा करने का, उसकी स्तुति करने का, उसे प्रेम रखने का, उसे अपना जीवन दे देने का प्रोत्साहन है।